हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। जैसे ही विक्रांत रंधावा धीरे धीरे खंडहर के अंदर जाने की ओर कदम बढ़ा रहा था, उसे एक प्रबल अनुभूति हो रही थी कि उसकी माँ यहीं मौजूद है। आखिरकार वो एक राक्षस था और उसकी माँ से उसका पिछले जन्म का भी नाता था। उसकी प्रबल अनुभूति उसे उसकी माँ तक ले ही आई थी, लेकिन जैसे ही वो अंदर गया, उसके सामने मामूली से सफ़ेद कुर्ता पजामा पहने हुए दो आदमी खड़े थे। उन्हें देखकर विक्रांत रंधावा चौंक गया। तब वे आदमी बड़े ही शराफत से बोले, जी आप कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं? उन दोनों आदमियों को देखकर विक्रांत हैरान रह गया और उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक देखने लगा, क्योंकि वे दोनों काफी मामूली दिखाई दे रहे थे। वे दिखने में बेहद साधारण थे और ऊपर से उन्होंने काफी साधारण कपड़े पहने हुए थे। विक्रांत उन्हें ऊपर से लेकर नीचे तक देख ही रहा था कि उनमें से एक बोला, जब आप जवाब नहीं दे रहे तो बताएं आप कौन हैं और यहाँ क्या करने आए हैं? तब विक्रांत बोला, मैं इस प्रॉपर्टी के मालिक का दोस्त हूँ और मैं यहाँ से गुजर रहा था, सोचा क्यों ना प्रॉपर्टी देखकर चला जाऊँ। लेकिन आप दोनों कौन हैं? हमने तो ये प्रॉपर्टी रेंट पर नहीं दी है, क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है इस प्रॉपर्टी पर कोई नहीं रहता है, और वैसे भी इस खंडहरनुमा जगह पर भला कौन कैसे रह सकता है? तब उन दोनों में से एक आदमी ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया, आप ठीक कह रहे हैं, हम यहाँ नहीं रहते, हम यहाँ से गुजर रहे थे, तभी हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, जान बचाकर हम यहाँ आ गए। अभी शहर में जाने के लिए हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, इसीलिए हमने इस जगह पर अपना सर छुपाने के लिए रुक गए हैं और हम कल रात को ही यहाँ आए हैं। जैसे ही विक्रांत ने ये सुना, उसे उनकी बातें समझ में नहीं आईं, उल्टा उसके दिमाग के ऊपर से ही जा रही थीं। हालांकि रह रहकर उसे उन दोनों पर शक हो रहा था, लेकिन तभी उसने सोचा कि हो सकता है वाकई उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया हो, और वैसे भी ये जगह शहर से काफ़ी दूर है, इसीलिए कोई और मदद ना मिल पाकर ये लोग रात में यहाँ रुक गए हों। तब विक्रांत ने उनसे कहा, क्या मैं इस जगह को देख सकता हूँ? विक्रांत की बात सुनकर वे दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे और फिर बोले, हाँ हाँ क्यों नहीं, आप बिल्कुल देख सकते हैं, और वैसे भी आप तो मालिक हैं, हम तो केवल मुसाफिर हैं जो यहाँ केवल कुछ ही पलों के लिए हैं। उन दोनों की बात सुनकर विक्रांत के चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई और वो जल्दी ही हर एक कमरे में खंडहर में चारों ओर घूमने लगा। जैसे ही वो खंडहर के अंदर एक कमरे में गया, उसे अपनी माँ के वहाँ होने का पूरी तरह से एहसास होने लगा, लेकिन उसकी माँ उसे कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। जब उसे रहा नहीं गया, वो बोल पड़ा, माँ माँ क्या आप यहाँ हो? विक्रांत रंधावा की माँ उसकी ओर देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे, क्योंकि वो चाहकर भी अपनी बेटे को आवाज़ नहीं लगा पा रही थी। उन जिन्नतों ने उसकी माँ को वहाँ पर अदृश्य कर दिया था ताकि वो किसी को भी दिखाई न दे, और साथ ही उसके चेहरे पर एक पट्टी बांध दी थी जिससे वो कुछ भी नहीं बोल पा रही थी। विक्रांत रंधावा कुछ देर वहीं रुका रहा। शिद्दत से उसे अपनी माँ के वहाँ होने का पूरी तरह से एहसास हो रहा था और वो इस एहसास को अपने दिलो दिमाग और जिस्म में पूरी तरह से बसा लेना चाहता था। और फिर जब वो कुछ देर वहीं रुक रहा था, तब वे जिन्नत एक दूसरे की ओर देखने लगे और मन ही मन में बातें करने लगे, कहीं इसे शक तो नहीं हो गया है, मुझे लगता है ये कोई आम आदमी नहीं है। हाँ, दूसरे ने कहा, इसके आने से इस जगह पर एक कंपन सा महसूस हुआ था, इसका मतलब साफ है कि ये कोई ना कोई बड़ी काली शक्ति है, लेकिन ये कौन है हमें इसका पता लगाना होगा। तभी विक्रांत वहाँ से बाहर आ गया, उन दोनों के सामने जाकर खड़ा हो गया और बोला, ना जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के अलावा भी यहाँ कोई और मौजूद है, आखिर कौन है वो, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। तब उनमें से एक मुसाफिर बोला, ये आप क्या कह रहे हैं, यहाँ तो केवल हम दोनों भाई ही हैं, यहाँ हमारे अलावा और कोई भी मौजूद नहीं है, आपको ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। तब विक्रांत बड़े ही खतरनाक तरीके से हंसा और देखते ही देखते उसने अपना हाथ उठाया और उन मुसाफिरों में से एक के गले पर रख दिया और बोला, बता मेरी माँ कहाँ है, तुझे क्या लगता है तुम लोग मेरी माँ को अपनी जादुई शक्तियों से छुपा दोगे तो क्या मैं अपनी माँ के यहाँ होने का एहसास नहीं कर पाऊँगा? विक्रांत रंधावा की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी थीं और ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखों में आग जलने लगी हो। तभी दूसरा मुसाफिर एक बार और कोशिश करता हुआ बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? सब हम लोग मुसाफिर हैं, हमारा किसी से कोई लेना देना नहीं है। ये आप जादू वगैरह की क्या बात कर रहे हैं? तब विक्रांत उसकी ओर देखा और दूसरे हाथ से उसका गला भी पकड़ लिया। तब वे जिन्नत समझ चुके थे कि अब ये काली शक्ति यानी दानव उनकी बातों में नहीं आने वाला है। इसीलिए अब वे जिन्नत भी एकदम से अपना वेश बदलने लगे। जहां वे सीधे साधे मामूली कपड़े पहने हुए थे, वहां धीरे धीरे वे बहुत ही बड़े और विशाल हो गए। इतने विशाल कि पूरे खंडहर से भी बाहर उनका सर जा रहा था। वे बहुत बड़े हो गए थे। उनका इतना बड़ा विशाल शरीर देखकर विक्रांत हैरान रह गया। वो ये देखकर समझ चुका था कि जरूर अमन ने अपने सबसे मजबूत जिन्नतों को उसकी माँ की पहरेदारी में लगाया था। वे दोनों जिन्नतों के सामने विक्रांत मामूली सा चूहे के जितना दिखाई दे रहा था। तभी उनमें से एक जिन्नत बोला, तू जो कोई भी है यहाँ से चुपचाप चला जा, कहीं ऐसा ना हो कि हम तेरी यहीं पर जान ले लें। तेरी भलाई इसी में है कि तू इसी वक्त इस जगह को छोड़ दे। अगर तूने हमारी बात नहीं मानी तो हम तेरा वो हाल करेंगे कि तू सोच भी नहीं सकता। उन दोनों जिन्नतों की बात सुनकर विक्रांत बहुत जोरों से हंसने लगा। और फिर देखते ही देखते विक्रांत का जिस्म एकदम से बहुत ही बड़ा विशाल होने लगा और धीरे धीरे उसका जिस्म भी उन जिन्नतों की तरह ही ऊंचा, बड़ा और विशाल हो गया, जिसे देखकर वे दोनों जिन्नत एक दूसरे की ओर देखने लगे। और फिर विक्रांत ने अपने मुंह से आंख के शोले निकालना शुरू कर दिए। वहीं दूसरी ओर एक जिन्नत ने अपने मुंह से उन आंख के शोलों से बचने के लिए एक पानी का गोला निकालना शुरू कर दिया, ताकि वो उन आंख के शोलों को बुझा सके। कितनी ही देर तक इसी तरह से विक्रांत उनके ऊपर आंख के शोले फेंकता रहा और वे लोग पानी के शोले उसके ऊपर फेंकते रहे। कितनी ही देर तक इस तरह की लड़ाई होती रही। उसके बाद विक्रांत उनके ओर आगे बढ़ा और उसने एक एक करके उन दोनों जिन्नतों के मुंह पर घूंसे मारे, जिससे वे लोग नीचे गिर गए और खंडहर का बहुत हिस्सा उनके गिरने से ध्वस्त हो चुका था। उसके बाद विक्रांत ने अपनी टांगें उठाई, जो काफी बड़ी, मजबूत और विशाल हो गई थीं। उन टांगों को उठाकर उसने उन दोनों जिन्नतों की गर्दन पर रख दिया और जब उन जिन्नतों को यकीन हो गया कि वो उस काली शक्ति, उस मजबूत शक्ति का सामना नहीं कर पाएंगे, तो देखते ही देखते वे दोनों जिन्नत विक्रांत के पैरों के नीचे दबे दबे ही गायब हो गए, क्योंकि उन दोनों जिन्नतों ने अपनी जान दे दी थी। उनको इस तरह से गायब होते देखकर विक्रांत हैरान रह गया और फिर जल्दी ही वो वापस से एक सामान्य इंसान के रूप में अपनी माँ के कमरे में गया। उसने देखा कि उसकी माँ एक पिंजरे में कैद थी और उसके हाथ, पैर और मुंह बांधे हुए थे। तब विक्रांत जल्दी से आगे बढ़ा और अपनी माँ को खोलने लगा। वहीं दूसरी ओर अमन तारा को अपने कमरे में ले गया था और उसकी आंखों पर उसने हाथ रख दिए थे। कमरे में जाकर तारा ने अमन से कहा, अब आप मुझे मेरा गिफ्ट दीजिए, आप मुझे इस तरह से चकमा नहीं दे सकते हैं
और ना ही मुझे बहला फुसला सकते हैं, क्योंकि मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली हूँ। तारा की बातें सुनकर अमन मुस्कुराने लगा और बोला, मैं आपको किसी तरह का कोई चकमा नहीं दे रहा हूँ। मैं बस आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे जितना प्यार इस दुनिया में कोई नहीं करता, उतना आपसे करता हूँ। तब तारा ने अमन से कहा, ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूँ, क्योंकि मेरे इस दुनिया में आपके अलावा और कोई नहीं है। जैसे ही तारा ने ये कहा, अमन उसे गहरी नज़रों से देखने लगा और बोला, ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हारा तो इतना बड़ा परिवार है। हाँ, मैं मानता हूँ कि तुम्हारा परिवार तुम्हारी शादी के बाद चार धाम की यात्रा पर चला गया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि तुम्हारा कोई नहीं है। तब तारा ने बात को संभालते हुए कहा, मेरा मतलब था कि आपके जितना प्यार करने वाला इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तब अमन मुस्कुराया और उसके माथे पर किस कर दिया और फिर बोला, अभी मैं आपको आपका गिफ्ट देने वाला हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि तब तक आप अपनी आँखें बंद रखें। अमन की बात सुनकर तारा ने अपनी आँखें बंद कर लीं। तारा ने तो अमन के कहने पर आंखें बंद की थीं, लेकिन आंखें बंद करते ही उसे एक विजुअल दिखाई देने लगा। उसे विजुअल में वो साफ साफ देख सकती थी कि वो किसी गहरे घने जंगल में है और उसके आसपास आग लग रही है। जैसे ही तारा ने ये विजुअल देखा, उसकी आंखों और जिस्म से पसीना बहने लगा। उसकी हालत खराब होने लगी थी। उसे ऐसा लगने लगा था जैसे कि वो आग में जल रही है।